सभा में उपस्थित परम पिता परमात्मा की अति प्रिय संतान और मंच पर विराजमान आदरणीय राजयोगी डॉक्टर सतीश भाई जी आप सभी के सम्मुख हैं। आपका जन्म सन 1959 में हुआ। आप वर्तमान समय मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट हैं ग्लोबल हॉस्पिटल आबू रोड। आप राजयोगी आध्यात्म नेता हैं। आप कलिकाल में विज्ञान और आध्यात्म के समन्वय स्वरूप हैं। आपके द्वारा हृदय रोग की संपूर्ण चिकित्सा पद्धति का परमात्मा पिता द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान राजयोग की शिक्षा पर अनुसंधान किया गया, जिससे आज हजारों नर नारी हृदय रोग से मुक्त बने हैं और प्रशिक्षण देकर सहज राजयोगी जीवन शैली की मार्ग प्रदर्शन दी। आपने पूर्व प्रशासक आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी का अहर्निश चिकित्सक सेवा की। आप चिकित्सक क्षेत्र में अद्भुत नक्षत्र हैं और आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अमूल्य रत्न हैं। आपने भारतीय संस्कृति के चिकित्सा क्षेत्र के द्वारा पाश्चात्य के विभिन्न देशों रसिया मॉस्को इत्यादि स्थानों पर सेवा का प्रचार प्रसार किया। आप अनेक संस्थाओं द्वारा भारत एवं विश्व के कई महाद्वीपों में सेवाओं के लिए सम्मानित हैं। राष्ट्रीय रत्न 2003 में आईएससी न्यू दिल्ली द्वारा आपको नेशनल जेल द्वारा सम्मानित किया गया। आपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनेक कार्यक्रम आयोजित कराए तथा उनमें सक्रिय भूमिका आपने निभाई। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमें अपने अनुभवयुक्त सारगर्भित विचारों से लाभान्वित करें। आदरणीय भ्राता डॉक्टर सतीश भाई जी, ओम शांति। अभी मैं स्वागत के लिए आमंत्रित कर रही हूं भाइयों को, वो आए। आदरणीय भाई जी का स्वागत और वैश्य गुलदस्ते और वैश्य स्वागत करें। जैसा कि आज आपका विषय है तनाव का कारण और निवारण। ओम शांति।
ओम शांति। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आपके बीच हूं। आप सभी विद्वानों के बीच मुझे आने का मौका मिला है, इसके लिए मैं आदरणीय रामनाथ भाई और धार्मिक विभाग का बहुत बहुत आभारी हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का युग कौन सा युग है? तनाव का युग है ना? नहीं ऐसा? आज अगर आप छोटे बच्चे से पूछें तो वो भी क्या कहेगा? टेंशन में हूं। और आज के युग में साधन बहुत हैं, किंतु साधन होने के बाद भी तनाव में है, टेंशन में है। आज से लगभग 40 साल पहले, 50 साल पहले साधन नहीं थे, फिर भी लोग तनाव में नहीं थे। तो ऐसा कहेंगे तनाव, साधन बढ़ने से तनाव बढ़ गया, ऐसा? चलिए आज हम इसी बात पर चर्चा करते हैं, तनाव के मुख्य कारण क्या है और तनाव का प्रबंधन करना क्यों जरूरी है और विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है। तो आज इसको बहुत ही हम गहराई से समझेंगे, तनाव क्यों होता है और कैसे उसका हम निवारण कर सकें। आप में से किस जिसको तनाव आज तक नहीं हुआ हाथ उठाएं, जिनको कभी तनाव नहीं हुआ आज तक, जिनको कभी आज तक तनाव टेंशन नहीं हुआ, कभी टेंशन नहीं हुआ, दिल पे हाथ रख के बताओ तनाव क्या है। चलो वो बताते हैं, स्ट्रेस फ्री लाइफ थ्रू राजयोगा मेडिटेशन। मुझे ना एक स्टूल दे सकते हैं यहां पे, ये रखने के लिए चॉक्स, ये रखने के लिए बोर्ड मार्क रखने के लिए, यहां रख दीजिए। तनाव क्या चीज है, क्या ये पॉसिबल है कि हम तनाव मुक्त जीवन जी सकें, कि हमें कभी तनाव हो ही नहीं, सब कुछ करते हुए अपने। हाँ जी, एक स्टूल यहां दे देंगे, उस पर ये हाथी पॉ है, उस पर बोर्ड मार्क कर सकते हैं। हम सब कुछ करते हुए, घर की जिम्मेवारियां संभालते हुए, ऑफिस की जिम्मेवारियां संभालते हुए, अपने कार्य जो भी हम कार्य करते हैं उस कार्य को संभालते हुए हम बिल्कुल तनाव मुक्त रहें, क्या ऐसा पॉसिबल है? जो समझते हैं पॉसिबल है वह हाथ उठाएं, जो समझते हैं नहीं पॉसिबल है वह हाथ उठाएं। बाकी कुछ लोगों ने उठाया, दोनों में, कुछ ने एक में उठाया, किसी दूसरे में, बाकी 50% ने किसी में हाथ नहीं उठाया। इसका मतलब उनको समझ में नहीं आया है बात, है ना। चलिए हम चलते हैं बेसिक से, हम शुरू करेंगे। आज के समाज में बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं, मन की बीमारियां भी बढ़ रही हैं और तन की बीमारियां भी बढ़ रही हैं। आज से 50 साल पहले ज्यादा बीमार थे, अब ज्यादा बीमार हैं लोग, अब ज्यादा बीमार हैं। एक पीछे सर्वे हुआ था, आपको पता है चार तरह की बीमारियां होती हैं, एक तो शरीर की बीमारियां होती हैं, एक मन की बीमारियां होती हैं, और एक सामाजिक बीमारियां होती हैं, और एक आध्यात्मिक बीमारियां होती हैं। जो शरीर की बीमारियों के बारे में देखें, शहरों में सर्वे किया गया था 2010 में, एक बड़ी बड़ी सिटीज हैं भारत में, दिल्ली है, चेन्नई है, मुंबई है, कलकत्ता है, अहमदाबाद जैसी सिटीज हैं जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं, उन सर्वे किया गया एडल्ट्स का, जो कि 25 साल से ऊपर के लोग हैं, और यह पाया गया कि 100 लोगों में से 30 लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, 100 में से लगभग 12 लोगों को डायबिटीज है, 100 में से 40 लोग मोटे हैं, ओबेसिटी भी एक बहुत बड़ी बीमारी है, मोटापा एक बहुत बड़ी बीमारी है, 100 में से 15 लोगों को हार्ट की बीमारी है, 100 में से 25 लोगों को एसिडिटी की बीमारी है, एसिड बनता है ना जो, एसिड रिफ्लक्स होता है, 100 में से 20 लोगों को हड्डियों की तकलीफ है, 100 में से 10 लोगों को सांस की तकलीफ है, 100 में से 10 लोगों को स्किन की बीमारियां हैं, स्किन की त्वचा की बीमारियां हैं, 5% लोगों को कैंसर है, 5% लोगों को कोई ना कोई हार्मोन की बीमारी, थायराइड की जैसे बीमारी होती है ना, थायराइड की बीमारी है, हार्मोन्स की बीमारी है कोई ना कोई, 5% लोगों को एक्सेस में कोई ना कोई हेडेक रहता है, सिर दर्द रहता है, माइग्रेन का या कोई और दर्द रहता है। तो लगभग अगर हम देखें तो 100 लोगों को 200 बीमारियां थी, एवरेज कितनी बीमारियां थी शहरों में, 100 लोगों को 200 बीमारी, मतलब एवरेज कितनी बीमारी हुई एक आदमी को, दो एक को, है ना, उनमें से किसी किसी को 5 भी थी। आप भी अगर अपने अंदर देखेंगे ना तो आपको 2 तो मिल जाएंगे ढूंढने से, नहीं मिलेंगे 2 तो, देखो ध्यान से देखो, मिल रही है, दिखाई दे रही है, तो अपने अंदर 2 बीमारी नजर आ रही है, दिखाई दे रही है ना? तो शरीर की बीमारी 2 को दिखाई देती है, मन की बीमारी क्या है, सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है, डिप्रेशन, उदासी। आज 100 में से 10 लोग डिप्रेशन में है, दवाई खा रहे हैं डिप्रेशन की, 100 में 10 लोग को नींद नहीं आती, गोली खा के सोते हैं, चिंता सबसे बड़ी बीमारी है ना, नहीं कहते चिंता जैसा मर्ज नहीं, ऐसा कौन है जिसको कोई चिंता नहीं, हाथ उठाओ, कोई चिंता नहीं, जिसने कभी चिंता की नहीं आज तक, बहुत अच्छा, एक स्वामी जी हमारे बता रहे हैं। हाँ जी, अच्छा, चिंता, फिर गुस्सा, जिनको कभी, जिन्होंने आज तक कभी गुस्सा नहीं किया, हाथ उठाओ, आप गुस्सा करना कोई नहीं चाहता है किंतु गुस्सा करते सब हैं, क्यों करते हैं गुस्सा, उससे क्या सॉल्यूशन होता है, आप एक रिसर्च आई थी पीछे, एक बार गुस्सा करने से 3 दिन तक आपका आपकी बॉडी पर नुकसान होता रहता है, दिमाग की सोचने की शक्ति, हार्ट की खून पंप करने की शक्ति, पेट में खाना पचाने की शक्ति, किडनी की तरह खून साफ करने की शक्ति 3 दिन के लिए कम हो जाती। नहीं ऐसा, अहंकार सबके अंदर है, ईगो सबके अंदर है, लोग बात बात में कहते हैं मेरी ईगो हर्ट हो गई, कहते नहीं कहते हैं। फियर सबके अंदर है, आप जानते हैं बीमारी शब्द कहां से आया, बीमारी शब्द आया बी माना डर, मारी माना बने रहना, अगर आपके अंदर डर बना हुआ है तो आप बीमार हैं, अगर बीमार नहीं है अभी तो बीमार होने वाले हैं। डर किस बात का होता है अधिकतर, किस बात का डर होता है, 3 डर तो कॉमन है सभी के अंदर, कौन कौन से, पहला मरने का डर, दूसरा बीमारी का डर, तीसरा बुढ़ापे का डर है ना, और चौथा गरीबी का डर है ना, तो ये 4 डर लगभग सबके अंदर कॉमन है। अमीर से अमीर आदमी भी डरता है कहीं मैं गरीब ना हो जाऊं, तो ये 4, तो डर जो है इंसान को क्या बनाता है, बीमार कर देता है। और आज एक बड़ी भारी जो प्रॉब्लम है टाइप ए बिहेवियर कहते हैं उसे, प्रेशर ऑफ टाइम, हमेशा टाइम का प्रेशर महसूस करना, काम का प्रेशर महसूस करना, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे परफेक्शन, जैसे मैं कहता हूं वैसा काम होना चाहिए, नहीं होता तो टेंशन होती है, नहीं होता गुस्सा करते हैं। तो ये जिसे कहते हैं टाइप ए नेचर, आज ये एक बहुत बड़ा कारण है हार्ट की बीमारी पैदा होने का, प्रेशर में जीवन काटना, हर समय प्रेशर, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, जैसे मैंने कहा ऐसा ही काम होना चाहिए, कंपटीशन, कंपैरिजन, एग्रेशन, ये सारे इसी के अंदर आते हैं। सिनिसिज्म माने दूसरों में दोष निकालने की आदत, हॉस्टिलिटी, रिवेंजफुल बिहेवियर, बदला लेने की भावना, सेंसिटिव नेचर, थोड़ी थोड़ी बात को फील कर लेना, भावुक हो जाना, ये सब बीमारियां मन की बीमारियां। हॉस्टिलिटी एक ऐसा जहर है, किसी के प्रति बदले की भावना रख लेना जो दिन रात आपको असर करता है, दिन रात आप सो रहे हैं जाग रहे हैं आपको दिन रात आपको अटैक करता रहता है, ऐसे केमिकल निकलते रहते हैं। हार्ट की बीमारी पैदा होने में ऐसी हार्ट की बीमारी होना जिसका कोई इलाज नहीं हो, ना बाईपास हो सके ना एंजियोप्लास्टी हो सके, ऐसी बीमारी ऐसे लोगों को हो जाती है। इसलिए कहा जाता है सबसे अच्छी दवाई क्या है, फॉरगेट एंड फॉरगिव, कोई बात हो जाए तो उसको माफ कर दो, फॉरगिव कर दो, फॉरगिव करना सहज है किंतु फॉरगेट फिर उसको भूल जाओ, वो फाइल ही डिलीट हो जाए हमारे दिमाग से, वो उससे भी मुश्किल है ना। तो मैं समझता हूं इसी बातों पर कुछ आपसे चर्चा करूंगा। सामाजिक बीमारी तो आप रोज देखते हैं समाज में क्या क्या हो रहा है, करप्शन है, भ्रष्टाचार है, अनाचार है, देखते हैं ना, बलात्कार हैं, मर्डर्स हैं, ईर्ष्या द्वेष है लोगों में आपस में, ये सामाजिक बीमारियां हैं, एक दूसरे के प्रति भाईचारा नहीं है। और आध्यात्मिक बीमारी कौन सी है, आध्यात्मिक बीमारी है घर घर में कलह है, पति पत्नी के अंदर कलह है, भाई भाई में कलह है, पड़ोसी पड़ोसी में कलह है, ये है आध्यात्मिक बीमारियां। हम एक दूसरे को ईगो के मैं जो हमने जो जो हमारे जो साधन हमने इकट्ठे किए हैं वो अधिक तौर पर या फिजिकल भौतिक तौर पर उसको अपना समझ करके हम क्या करते हैं, उसकी ईगो आने से आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। पति पत्नी सब पत्नी समझती मैं बड़ी, पति समझता मैं बड़ा, पति समझता मैं डायरेक्टर हूं घर का, पति समझती मैं डायरेक्टर हूं, पत्नी समझती मैं डायरेक्टर हूं, मेरी बात सबको माननी चाहिए, रहते एक छत के नीचे हैं पर दोनों झगड़ते हैं। और उससे हमारे बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इनसिक्योर महसूस करते हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं, उनकी सही ढंग से पालना नहीं होती, सही ढंग से उनका विकास नहीं हो पाता है। यह आध्यात्मिक बीमारी है। आतंकवाद आध्यात्मिक बीमारी है जो सारे देश विदेश में फैल चुका है, पूरे विश्व में फैल गया। क्यों, आतंकवाद क्या चीज है, आतंकवाद है कि इसमें हम एक एक जाति दूसरी जाति को खत्म कर देना चाहती है, एक धर्म दूसरे धर्म को खत्म करना कर देना चाहता है। अगर हम सभी ये समझ जाएं कि हम सब आत्माएं हैं और हमारा पिता एक परमात्मा है, हम सब आपस में भाई भाई हैं, धर्म शरीर के हैं पैदा होने के पहले, पैदा होते समय कोई भी ना हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना सिख होता है, ना ईसाई होता है, किंतु जिस घर में जन्म लेता है उसके रीति रिवाजों के अनुसार वो वैसा बन जाता है। तो अगर हम इस बात को, अगर ये एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन बचपन से दी जाए तो क्या होगा, आतंकवाद पनपेगा? इसका एकमात्र सॉल्यूशन आतंकवाद का है स्पिरिचुअल एजुकेशन, स्कूलों में कॉलेजों में दी जाए। और दूसरा कम्युनल राइट्स, जो आज सांप्रदायिक दंगे होते हैं उनका कारण भी वही है, यह भी आध्यात्मिक बीमारी है। तो आज ये बीमारियां समाज में बुरी तरह से व्याप्त है और कोई मनुष्य इनसे अछूता नहीं है, हर मनुष्य को ये बीमारी है। तो आज अगर शारीरिक बीमारियां भी देखें तो 100 में से 95 बीमारियां तनाव से कंसर्न है, स्ट्रेस रिलेटेड है, तनाव से पैदा होती हैं। और इसको साइकोसोमेटिक भी कहते हैं, साइकोसोमेटिक मीन्स साइकी मीन्स माइंड, सोमा मीन्स बॉडी, अर्थात पहले मन में आती है फिर बॉडी में आती है। इवन जुखाम, जुखाम होना वो भी साइकोसोमेटिक है। जब आप टेंशन में रहते हैं, थोड़ी थोड़ी बात फील करते रहते हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है। नॉर्मल वायरस, नॉर्मल बैक्टीरिया जो आपकी नाक में रहते हैं, आपके स्किन पे रहते हैं, वो आपको इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं। नॉर्मल कीटाणु जो आपके गले में रहते हैं, मुंह में रहते हैं, वो आपको बीमारी पैदा कर देते हैं। तो कोई भी बीमारी, चाहे मन की या तन की, उनका तनाव से कनेक्शन है। आज तो हम ऐसा मानते हैं, 1977 में पहली बार जब इसके ऊपर रिसर्च हुई, पहली बार ये साइकोसोमेटिक या माइंड बॉडी मेडिसिन का नाम आया, तो उस समय कहते 70% बीमारियां साइकोसोमेटिक है। किंतु आज जब 90 में जैसे रिसर्च शुरू और रिसर्च बढ़ी, तो उसमें 90% कहते थे, फिर 2000 में 95% कहा, और अब तो मैं कहता हूं, शायद अब तो हम भी कहते हैं, कोई उन्हें एक्सीडेंट होते हैं वो भी साइकोसोमेटिक है, कोई मन से पैदा होते हैं। तो आज लगभग हर बीमारी साइकोसोमेटिक है, अर्थात तनाव जनित है, तनाव से पैदा होती है। तनाव कब होता है? व्हेन वी फील स्ट्रेस, व्हेन वी फेस इनजस्टिस, जब हम अन्याय ऐसा महसूस करते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, उस जब हम अन्याय महसूस करते हैं, मेरे साथ पार्शियलिटी हो रही है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो हम कैसी 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 हमें स्ट्रेस महसूस होती है, एक तरह बहुत ही पॉइजनस या जहरीली स्ट्रेस महसूस होती है, तनाव पैदा महसूस होता है। व्हेन वी रिपीटेडली फेस नेगेटिव एक्सपीरियंसेस और फेलियर इन लाइफ, जब हम जीवन में बार बार कुछ करना चाहते हैं वो हो नहीं पाता है, या हमारे अनुभव जीवन में जो हमारे कार्य के साथ, परिवार में या समाज में हमें बार बार अनुभव जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, नकारात्मक, फेल होते हैं बार बार, तो हमें स्ट्रेस होती है। स्पेशली जो ऐसे व्यक्ति जो सेंसिटिव हैं, सेंसिटिव मैंने पहले ही बताया, सेंसिटिव कौन से व्यक्ति होते हैं, सेंसिटिव वो व्यक्ति हैं जो थोड़ी बात को फील, उनकी थ्रेशोल्ड होती है हमेशा, एक थ्रेशोल्ड समझते हैं, एक थ्रेशोल्ड होती है, थ्रेशोल्ड का मतलब है जैसे किसी को थोड़ा सा भी हमने टच किया तो एक आदमी उछल के पड़ता है ना, और एक आदमी को कुछ भी करे थोड़ा गर्मी सर्दी का भी फर्क नहीं पड़ता है। तो कोई आदमी इतने सेंसिटिव हो जाते, थोड़ी सी बात उनको कह देंगे, थोड़ा सा कुछ बदल जाएगा, वो एकदम से रिएक्ट करते हैं। सेंसिटिव व्यक्ति अधिकतर बाहर एक्सप्रेस नहीं करते, अंदर अंदर फील करते हैं, उनकी विचारों की स्पीड बढ़ जाती है। मैं अभी थोड़ा उस पर आऊंगा, विचारों की स्पीड क्या होती है, किस तरह से वो बढ़ती है। तो वो सेंसिटिव व्यक्ति ज्यादा प्रोन होते हैं, उनको तनाव अधिक होता है, आम आदमी से अधिक होता है। इमोशनल, भावुक जो लोग होते हैं, वो लोग भी ज्यादा मात्रा में स्ट्रेस महसूस करते हैं। इंटेलेक्चुअल, जो ज्यादा बुद्धिजीवी होते हैं, वो भी ज्यादा तनाव महसूस करते हैं। ठीक बात है, गलत बात है? जो ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे वो क्या करेंगे, वो ज्यादा तनाव महसूस करते हैं। क्रिटिकल पर्संस, और कुछ लोगों की नेचर होती है, मैंने बताया पहले भी, सिनिकल लोग होते हैं, वो थोड़ी थोड़ी सबको क्रिटिसाइज करते रहते हैं, वो लोग भी ज्यादा तनाव महसूस करते हैं। तो आप चेक कर लें, इनमें से हम कुछ तो नहीं है चारों में से, इंटेलेक्चुअल तो हम सभी हैं, तो पर उसमें से भी हमें बैलेंस, मैं आपको बताऊं कैसे हम बैलेंस रखना है, चार तरह की जो इंटेलिजेंस है उसका हमें कैसे बैलेंस रखना होता है, मैं आपको बताऊंगा। तो व्हाट इज स्ट्रेस, तनाव है क्या चीज, वो तो हमने जाना कि तनाव, कब हम तनाव महसूस करते हैं, कौन तनाव महसूस करते हैं। अब तनाव क्या चीज है, तनाव जो है, तनाव जो है अगर हम बहुत सिंपल भाषा में लें, तनाव स्ट्रेस इज ए रिएक्शन टू चेंज। जब कुछ परिवर्तन होता है तो उससे तनाव पैदा होता है। उस चेंज को, उस परिवर्तन को अगर हम उसको रिएक्शन करते हैं तो उससे तनाव पैदा होता है। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूं, आप अपने घर में रोज आते हैं, आपके घर में आपको रोज आपकी जो अगर परिवार में जो प्रवृत्ति भारत में रहते हैं, कुछ निवृत्ति में भी रहते हैं, कुछ प्रवृत्ति में भी रहते हैं, प्रवृत्ति में जो रहते हैं तो वो मान लीजिए आप घर पे आते हैं, काम करके आते हैं, आपकी वाइफ आपको एक गिलास पानी ऑफर करती है, ठीक है, या चाय बना के देती। आज आपको, आज घर पे आए, आज आपको उसने कुछ भी बात भी नहीं की, ना पानी पूछा, ना चाय बना के दी, और एकदम चुप होके दीवार की तरफ मुख करके बैठे, तो क्या होगा? चेंज हुआ ना, रोज की बजाय आज एक चेंज हो गया ना, चेंज हुआ, परिवर्तन हुआ, बिहेवियर में परिवर्तन हुआ, तो क्या होगा? आपको तनाव आया ना, आज ऐसा क्यों किया? ये रिएक्शन अगर आप उसको गुस्सा कर देते तो क्या होगा? ये तनाव का कारण बन, घर में कलह बन गई। हो सकता है अगर आप इस पर एनालाइज करें, विश्लेषण करें, सोचें, दिमाग लगाएं कि आज ऐसा आज क्यों है, आज ऐसी क्या बात हो गई, क्यों मुझसे बोल नहीं रही है, तो आप सोचेंगे हो सकता है कुछ खबर आई हो घर से, को घर में तबीयत ठीक से दर्द हो रखा हो, है ना, या किसी बात पर शरीर में कोई बीमारी हो गई हो, है ना, तो आप फिर प्यार से पूछेंगे कैसे क्या बात हुई, तो फिर आपको उसका आंसर मिल जाएगा, तनाव नहीं होगा। हम क्या करते हैं, रिएक्शन कर देते हैं। आप ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में आपको लोग नमस्ते करते हैं, या आप बॉस हैं, आपके सेक्रेटरी आपको नमस्ते करते हैं, या आपके साथ जो भी कंसर्न लोग हैं आपको पूछते हैं, एक दिन नहीं पूछा, गुड मॉर्निंग नहीं किया, तो क्या होगा? आपको आज चेंज हो गया ना, तो आपको रिएक्शन कर दी तो टेंशन हो जाएगी सारे वातावरण में, आपका सारा दिन खराब हो जाएगा। और आप आराम से पूछ के क्या कारण है, कैसे है, ऐसा क्यों हुआ, है ना, या थोड़ी पेशेंस रखेंगे, धीरज रखेंगे तो वो सोल्यूशन निकल आएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, रिएक्शन। अब रिएक्शन कहां से पैदा होती है, मैं आपको बताऊंगा। इस पर इसकी हम थोड़ी गहराई में चले जाते हैं। देखिए, हमारे दो ब्रेन्स हैं, एक राइट ब्रेन है, एक लेफ्ट ब्रेन है। अगर हम बनाएं, डायग्राम बनाएं, एक राइट ब्रेन, एक लेफ्ट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन हमारा लॉजिकल ब्रेन है, लॉजिकल समझते हैं, लॉजिकल माने एक पेड़ से अगर सेब गिरता है तो नीचे जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए, ये एक लेफ्ट ब्रेन कहता है नीचे जाना चाहिए, लॉजिक है ना, तो चीज गिरी तो ग्रेविटी के कारण से नीचे जानी चाहिए। और राइट ब्रेन है क्रिएटिव ब्रेन है, इमोशनल ब्रेन, भावुक ब्रेन है। राइट ब्रेन हमारा, लेफ्ट कैसा ब्रेन है, भावुक ब्रेन है। यह ब्रेन कहता नहीं ऊपर भी जा सकता है। जो भाई हैं, मेल्स हैं, उनका लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट होता है, लॉजिक की बात करते हैं हमेशा, और राइट ब्रेन जो होता है बहनों में डोमिनेंट होता है, फीमेल्स में, हार्मोन्स है ना, फीमेल हार्मोन्स और मेल हार्मोन्स, इसलिए बहनें ज्यादा इमोशनल होती हैं, भावुक हो जाती हैं जल्दी, है ना, और भाई क्या होते हैं, बहनें जल्दी रोना शुरू कर देंगी और भाई क्या होंगे, मुश्किल से रोएंगे, गुस्सा ज्यादा करते हैं, नहीं ऐसा होता है, लॉजिक, ये काम इस तरह से नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, है ना, और बहनें क्या करेंगी, थोड़ी सी बात उनके हिसाब से नहीं करेंगे तो रोना शुरू कर देंगी, है ना। तो वो सेंसिटिव, ये हमारा क्रिएटिव भी है, साथ क्रिएटिव, क्रिएटिव है ना, कुछ लीक से हटकर होना। एक्चुअली इंसान को जीने के लिए दोनों ब्रेन्स की आवश्यकता है, लॉजिक भी चाहिए और भावुकता, इमोशनल क्रिएशन भी चाहिए, क्रिएटिव भी चाहिए। इसलिए जिस परिवार में पति और पत्नी सलाह से काम करते हैं, मिलजुल के रहते हैं, वो घर सरल होता है, उस घर में हर काम ठीक, क्योंकि जहां तक पति सोच सकता है जहां तक मेल सोच सकता है वो फीमेल, उसके आगे फीमेल सोचती है। आपको पता होगा जो बीरबल और अकबर की कहानी सुनते हैं ना आप, अकबर जो था, अकबर जो भी समस्या लेकर, समस्या उसके पास होती थी वो जब बीरबल के सामने रखता था तो बीरबल उसका क्या 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 कहता था उसके बारे में, है जी? हाँ ठीक बात है, चलिए ठीक बात है कि माता जी ने एकदम एक्यूरेट बोला, बहुत अच्छा। तो लेफ्ट जो हमारा जो, तो अकबर जो था, अकबर क्या करता था, कोई बात के लिए समय मांगता था, तुरंत जवाब नहीं देता था कि मुझे आज एक दिन का समय दीजिए, एक हफ्ते का समय दीजिए, है ना। वो क्या करता था, उसकी बेटी जो थी वो जाके अपनी बेटी से पूछता था, उसको समझ में नहीं आती कुछ बातें तो वहीं उसको क्लियर होती थी, वहीं बता देता था, कुछ बातें जो समझ नहीं आती उसकी अपनी बेटी से डिस्कस करता था। उसकी बेटी बहुत विलक्षण प्रतिभा वाली थी, वो उसका आंसर बताती थी। तो क्रिएटिव जो ब्रेन है वो फीमेल्स के ऊपर ज्यादा है, इसलिए जितने देखो डिजाइंस, स्वेटर में डिजाइंस, तरह तरह के खाने, हाँ मेल्स क्या कर सकते हैं, जो खाने बनाए ना उसको रिपीट कर सकते हैं, जो बहनों ने क्रिएट कर दिया उस चीज को मशीन को रिपीट, उसको रिपीट कर सकते हैं, किंतु बहनें जो क्रिएटिविटी कर सकते हैं वो भाई नहीं कर सकते। सत्युग में किंतु अलग बात है, सत्युग में क्या है, दोनों ब्रेन्स का हर इंसान में बैलेंस है, राइट और लेफ्ट ब्रेन का। इसलिए वहां का मानव संपूर्ण मानव है, यहां का मानव अपूर्ण मानव है, क्योंकि आदमी सिर्फ लेफ्ट ब्रेन काम करता ज्यादा और बहनें ज्यादा लेफ्ट राइट ब्रेन ज्यादा काम करती हैं, किंतु कुछ यहां कुछ डिफरेंस भी है, ऐसा नहीं सबके लिए अप्लाई नहीं करता, कुछ बहनें भी आज के समाज में दोनों का बैलेंस भी है, कई ज्यादा अभी वो लेफ्ट हो गए हैं, बल्कि लेफ्ट बहनें लेफ्ट डोमिनेंट हो गए, कुछ भाई भी कुछ राइट ज्यादा डोमिनेंट वाले होते हैं, है ना, बहुत भावुक हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात, तभी कहा ना, तब नीचे नहीं दबा रहे हैं, इसलिए कहा सत्युग में, बताया ना मैंने अपूर्ण और सपमूर्ण की बात की, लक्ष्मी लक्ष्मी श्री नारायण, इसलिए पहले इस नारी को रखा गया, वंदे मातरम, वंदे पितरम नहीं कहा गया है ना, वंदे मातरम कहा गया है ना, भारत माता कहा गया, भारत पिता नहीं कहा गया है ना, तो क्योंकि वो नारी जो है इसमें, क्योंकि क्रिएटिविटी चाहिए ना, समाज बिना क्रिएटिविटी के यूजलेस है, बेकार है ना। तो ये जो है, ये पावर जो है राइट और लेफ्ट ब्रेन की हो गई। अब इसके अंदर दोनों ब्रेन्स के नीचे ये हाइपोथैलेमस है, ये दोनों ब्रेन का ब्रेन है, दोनों ब्रेन का भी ब्रेन है, मतलब दोनों ब्रेन्स की एनकोडिंग डिकोडिंग यहां पर होती है हाइपोथैलेमस में। एक तरह से वॉच डॉग है, वॉच डॉग माना पहरे का कुत्ता जैसे होता है ना, घर के बाहर, घर में जैसे कुछ भी गलत होगा तो, गलत आदमी आए घर में आएगा तो कुछ भी गलत घटना होगी, कुत्ता भौंकना शुरू कर देता है। तो ये कुछ भी गलत इस दिमाग से आप करेंगे, चाहे राइट से चाहे लेफ्ट से, तो हाइपोथैलेमस में उसका रिएक्शन होता है। हर चीज जो भी आप सोचते हैं, स्मृति हमारी यहां पर है, वृत्ति और भावनाएं हमारी टेम्पोरल लोब में रहती हैं, और जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, उसकी फीलिंग इन दोनों ब्रेन्स में जाती है, और वो उसकी फिर जो इफेक्ट, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो इफेक्ट यहां पर विचारों के रूप में हाइपोथैलेमस में आता है। और हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस जो है वो वहां पर विचार आते हैं, विचार केमिकल में बदल जाते हैं, और वो केमिकल एक सेकंड से भी कम समय में सारी बॉडी में फैल जाते हैं। बॉडी में हमारे 80,000 बिलियन कोशिकाएं होती हैं, जैसे एक मकान ईंटों से बना, हमारी बॉडी कोशिकाओं से बनी होती है, और वो यहां पर उसका असर हो जाता है, वो यहां से सारी बॉडी में फैल जाते हैं। और ये नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड कहते हैं उसको बॉडी की, वो जो ग्लैंड है उससे फिर ऐसे हार्मोन निकलते हैं डिपेंडिंग ऑन कौन से विचार यहां पर आए, नेगेटिव या पॉजिटिव, उसके अनुसार फिर केमिकल हार्मोन्स यहां से निकलेंगे जो सारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। और उसके नीचे हमारा ये जो है हमारा फिर नीचे लोअर ब्रेन होता है मेरा, आज मैंने सोचा मैं आपको थोड़ा सा इस पर हाईलाइट कर दूं ताकि आप समझ जाएं। अब ये जो है यहां से पहली नर्व निकलती है जिसको हम सूंघने की नर्व कहते हैं, दूसरी नर्व देखने की नर्व है जिससे पुतली हमारी छोटी बड़ी करके हम देख सकते हैं, तीसरी चौथी और छठी नर्व जो है वो हमारी आंख पुतली को ऊपर नीचे घुमाने की नर्व है, साइड में देखना, इधर देखना, उधर कहां देखना है इससे हम देख सकते हैं। पांचवी नर्व जो है हमारी वो हमारे चेहरे पे सेंसेशंस, हमें को प्यार से छूता है, आशीर्वाद देता है, सिर पर भी, ये पूरा का पूरा एरिया, पूरा फेस यहां तक का पूरा इस पांचवी नर्व से कंट्रोल होता है, जिससे कि हमारे सेंसेशंस चेहरे पर, सिर पर, उसको फील करना किस भाव से मैं छू रहा है वो जो है इससे होते हैं। और प्लस खाना चबाने की नर्व है। सातवीं नर्व हमारे चेहरे पे जो एक्सप्रेशन आते हैं, हम मुस्कुराते हैं, गुस्सा करते हैं, उदास होते हैं, है ना, हर्षित होते हैं, जो भी चेहरे पे एक्सप्रेशन हम आते हैं, हमारे जो एक्सप्रेशंस हैं, नफरत के भाव, प्यार के भाव, वो सब भाव इस सातवीं नर्व के द्वारा प्रेषित होते हैं, कंट्रोल होते हैं। आठवीं नर्व जो है हमारी सुनने की नर्व है, हम सुनते हैं ना कानों के द्वारा, इसके द्वारा सुनते हैं। ये मैंने पांच कर्मेंद्रियां जो बताया मैंने आपको, जो हमारी पांच कर्मेंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, मुख और त्वचा, ये कैसे कंट्रोल होती है मैं आपको बताता हूं। तो रिएक्शन आप समझेंगे ना, तभी तभी आप समझ पाएंगे। इसके भी दो पार्ट है, एक तो सुनने का काम, दूसरा थ्री डी बैलेंस, थ्री डायमेंशनल बैलेंस, कि हम खड़े हैं तो मुझे पता है कि मैं, मेरे पीछे क्या, आगे क्या है, और मैं स्थिर हूं। अगर ये नर्व खराब हो जाए तो क्या, हम चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, उल्टी आने का दिल करता है। फिर नौवीं नर्व सुनने की नर्व है, वोकल कॉर्ड यहां पर होते हैं, उससे सुनते हैं। दसवीं नर्व खाना निगलने की नर्व है, खाना हम खा लिया, हमने चबा लिया, फिर निगल जाए उसके लिए। ग्यारहवीं नर्व जो है, जैसे आप खाना खा रहे हैं और आपको कहे और खाएंगे क्या, और दूं क्या, तो कैसे कैसे बोलेंगे, मुंह में तो खाना भरा हुआ है, कैसे बोलेंगे, या तो ऐसे ऐसे करेंगे, नहीं या हाँ जी करेंगे ना, हैंड ब्रेक जैसे, कार में एक हैंड ब्रेक होती है ना, तो हैंड ब्रेक जैसे है ये, तो ग्यारहवीं नर्व गर्दन को, गर्दन से नाजी और हाजी करने की नर्व है, ठीक है, बिना बोले एक्सप्रेस करने की नर्व। और बारहवीं नर्व जो है वो हमारी जीभ की नर्व है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये नर्व्स यहां पर रहती हैं, और हमारे ही इसमें हाइपोथैलेमस में हमारा एक थर्मोस्टेट लगा हुआ है, कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर, चाहे बाहर गर्मी हो चाहे सर्दी हो, चाहे बाहर जीरो डिग्री टेम्परेचर हो तो भी बॉडी का टेम्परेचर 37 ही रहेगा, बाहर अगर 50 डिग्री टेम्परेचर तो भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 ही रहेगा। थर्मोस्टेट एक घड़ी भी लगी है अंदर, इसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, कि कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे मेडिटेशन करना है, कितने बजे आपको स्नान करना है, कितने बजे आपको वॉकिंग करनी है, किस समय आपको नाश्ता करना है, लंच करना है, डिनर करना है, कौन सा टाइम बेस्ट है जिससे आप बेस्ट काम कर सकते हैं, ऑफिस का या घर का, तो वो भी उसमें निहित है। अगर आप उस घड़ी के अनुसार चलते हैं, इसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, तो आपकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है, इफेक्टिव होता है। तो वो घड़ी भी अंदर हाइपोथैलेमस से लगी है। अब यहां से दो तरह की तारें निकलती हैं हाइपोथैलेमस से, एक गर्म तार निकलते हैं, इसे सिंपैथेटिक सिस्टम कहते हैं। जैसे जब भी खतरा होगा, किसी तरह का खतरा हो, आग लग जाए, कुछ गलत हो जाए, कोई भी आप गलत काम करेंगे, गलत सोचेंगे, गलत देखेंगे, गलत बोलेंगे, गलत कुछ भी गलत होगा, कुछ खतरा आसपास होगा, तो ये लाल तार एक्टिव हो जाएगी। इससे हार्ट रेट बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, नसें सिकुड़ जाएंगी, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आप लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, फाइट और फ्लाइट। दूसरी तार जो निकलती है हाइपोथैलेमस से, वो है ठंडी तार एक, इसको हम कहते हैं पैरासिंपैथेटिक सिस्टम। पैरासिंपैथेटिक सिस्टम का अर्थ है कि ये जो है हमारा रिलैक्सेशन सिस्टम है, एवरीथिंग इज ओके, है ना, जैसे आप अपने आपको मैसेज दे दिया सब ठीक ठाक है, तो आप रिलैक्स फील करेंगे, आपका हार्ट रेट नॉर्मल हो जाएगा, बीपी कम हो जाएगा, मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी, आपको नींद आ जाएगी। लाल तार एक्टिव होगी, भले सोने का समय हो गया है कि तो आपको नींद नहीं आएगी, ठीक है। तो ये दो सिस्टम यहां लगे हैं। अब ये तो डेड बॉडी में भी होते हैं, ये लाल तार, हरी तार, ये नर्व्स, ब्रेन, राइट लेफ्ट ब्रेन भी होता है, किंतु चलाने वाला कौन, इसको चलाने वाला कौन, कौन इसको, इसको हम ऊपर वाले ब्रेन को कहते हैं हायर ब्रेन, और नीचे वाला जो ब्रेन है इसको कहते हैं लोअर ब्रेन। ये दोनों ब्रेन्स डेड बॉडी में भी हैं और जिंदा इंसान में भी हैं, इसको चलाने वाला कौन। एक आदमी हॉस्पिटल में आता है, उसको हम बचाने की कोशिश करते हैं, हमारी सब कोशिश करने के बाद भी वो मर जाता है, तो हम क्या कहते हैं पेशेंट के रिलेटिव्स को, डॉक्टर्स क्या कहते हैं, आई एम सॉरी, वी ट्राइड अवर बेस्ट, ही हैज गॉन, टेक द बॉडी, है ना, यही बोलते ना, हमने बहुत कोशिश की बचाने की किंतु वो चला गया, बॉडी ले जाइए। कभी ऐसा बोलते हैं कि अपना पेशेंट वापस ले जाइए? अमेरिका में बोलते हैं ऐसा कि अपना पेशेंट वापस ले जाइए? आया था पेशेंट, बन गया बॉडी, क्या निकल गया उसके अंदर से? आत्मा निकल गई ना। तो ये जो आत्मा है शरीर को चलाती है, ब्रेन कंट्रोल रूम है किंतु आत्मा है कंट्रोलर। तो आत्मा ड्राइवर कहां बैठ, मतलब ड्राइवर है, बॉडी कार, शरीर कार है किंतु इसका ड्राइवर कौन है? आत्मा। तो आत्मा कहां बैठेगी, कहां पर? कार में, कार में कहां बैठती है आत्मा? कार में ड्राइवर कहां बैठता है, कौन सी सीट पर? पीछे वाली सीट पर, लेफ्ट में। वो वहां बैठता है जहां पे सारे कंट्रोल है, स्टीयरिंग भी है, ब्रेक भी है, क्लच भी है, लाइट भी है, हॉर्न भी है, है ना, पानी भी है, है ना। वो तो सबसे अच्छी जगह कहां पर है जहां बैठ सके आत्मा? यहां बैठेगी क्या? इसमें, 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 एक्चुअली ये जो हाइपोथैलेमस में बैठेगी, ठीक है। तो आत्मा यहां बैठती है, एक बिंदु है, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, अति सूक्ष्म, इन आंखों से ना दिखाई देने वाला। और ये जो आत्मा जो है, यहां से सात एनर्जी निकलती रहती है, और वो सात एनर्जी इसके, जैसे हम इसके आसपास एक ग्लो के रूप में दिखा देते हैं, जैसे बल्ब के आसपास ग्लो होता है ना, ऐसे इसको दिखा देते हैं, ठीक है। और ये जो है, ये जो आत्मा, जैसे देखा होगा आपने, अगर आपने देखा है ऊपर से पानी गिरता है पहाड़ से, सॉरी ऊपर, जैसे ऊपर से पानी गिरता है, नीचे पानी गिरता है, जैसे सतलुज बाखरा डैम है, नर्मदा डैम है, तो पानी के, जहां पानी के नीचे गिरता है उसके नीचे क्या होता है? नहीं नहीं, उसमें जब ऊपर से गिरेगा तो क्या करते हैं, नीचे नीचे हम, नहीं नहीं, वो जो होते हैं बड़े बड़े टर्बाइन्स चलते हैं, टर्बाइन्स चलते हैं, पानी के गिरने से टर्बाइन चलते हैं, और वो फिर वो बिजली पैदा होती है, उसको डायनामो में इकट्ठा करके सारे शहर में बिजली सप्लाई की जाती है। ऐसे ही वो हाइपोथैलेमस, ये ऐसी जगह है यहां पर हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में, वो सेल्स इस स्पिरिचुअल एनर्जी को कैच कर लेती है, ठीक है, और वो स्पिरिचुअल एनर्जी मेंटल एनर्जी में बदल जाती है, ठीक है, विचारों में कन्वर्ट होती है, और वो फिर बाद में फिजिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है जिससे हमारी बॉडी चलती है, ठीक है। तो ये सात एनर्जी जो निकलती है इससे, वो कौन कौन सी एनर्जी है? ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां। फार्मूला है KP² लो हाई ब्लड प्रेशर, ना? ये सात एनर्जी हैं जो आत्मा से निकलती है। ज्ञान माना ABCD, और ये जो है हमारे जो हायर ब्रेन में जो पावर है वो एशिया की पावर है जो सिर्फ इंसान के अंदर है, जानवरों में नहीं है, ठीक है। तो जितना अधिक ABCD का मतलब क्या है, एक यहां से एक मैसेज निकलता रहता है, एक आवाज जाती रहती है आत्मा से, उस अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु से, वो एक तरह का अनंत नाद है, अनंत नाद समझते हैं, शब्द जिसे कहते हैं, वर्ड भी कहते हैं, अनंत नाद, अनंत माना जो कभी ना खत्म होने वाला, अनलिमिटेड, नाद माना साउंड, अनलिमिटेड साउंड, यहां से एक साउंड जैसे अल्ट्रासाउंड होते हैं, सुनाई नहीं देती आंखों कानों से, किंतु साउंड है वो भी, उससे हम जमीन की गहराई, समुद्र की गहराई नापते हैं, तारों की ऊंचाई नापते हैं। तो वो जो है आवाज यहां से जा रही है बॉडी की सेल्स पर कि मैं हूं ना, मैं आत्मा हूं, मेरा पिता परम आत्मा है, मेरे सर्व संबंध, सी फॉर कनेक्शन, बी फॉर बाबा, बाबा मीन्स परमात्मा, और सी माना कनेक्शन, अर्थात मेरा सर्व संबंध उसके साथ है, वो मेरा माता भी है, मेरा पिता भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, बंधु भी है, सखा भी है, साजन भी है, सज्जन भी है, और जो भी संबंध पॉसिबल है वो मेरे सारे संबंध उसके साथ है। नो डी फॉर ड्रामा, संसार एक नाटक है, इस नाटक में हम सब एक्टर्स हैं, परमात्मा इसका डायरेक्टर है, और इसे कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहा है, अर्थात कोई मेरा बच्चा, मेरी पत्नी या मेरा दोस्त, मुझे दुख दे रहा है और परमात्मा को मैं कहूं कि इसको इसको आप ठीक कर दो, ये मुझे दुख ना दे, तो परमात्मा ऐसे करेगा क्या? नहीं करेगा। परमात्मा उसको कहता है कि तुम उसको वो तुमने दुख दिया हुआ है इसलिए तुम्हें दुख मिल रहा है, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें सहन शक्ति दे देता हूं। तो सहन शक्ति आपको दे देता है और वो उससे आप उसको सहन कर लेते हैं, उससे क्या क्या फायदा हुआ? आपका अकाउंट भी क्लियर हो गया और आपको फील भी नहीं हुआ। अगर आपने बैंक से लोन लिया तो वापस करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना। तो ऐसा ही हमारे आपस संबंधों में जो भी हमने पिछले दिनों में गलत काम किए हुए हैं, वो संबंधों के थ्रू हमको पति पत्नी से थ्रू पति पत्नी पति को पत्नी से, पत्नी को पति से, बच्चों से, दोस्तों से, भाई बहन से, माता पिता से, बॉस से, नीचे काम करने वालों से, जो भी दुख सुख दिए हुए हैं पिछले जन्मों में, हमें इस जन्म में वापस चुकतू करने हैं। और वो कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट हो रहा है, इसलिए अभी तक जो हुआ अच्छा हुआ है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है अच्छा होने वाला है। तो ये जो ये ज्ञान यहां से एक साउंड के रूप में जा रहा है जिससे हमारी सब कोशिकाएं ठीक काम करती रहती, ठीक है, और इससे पवित्रता का जन्म होता है। ज्ञान से पवित्रता आती है, ठीक है। तो ज्ञान से पहली एनर्जी है ज्ञान, दूसरी उससे पवित्रता पैदा होती है, पवित्रता से शांति पैदा होती है, शांति से प्रेम रूहानी प्यार पैदा होता है, प्यार से खुशी पैदा होती है, खुशी से आनंद पैदा होता है, और आनंद से शक्तियां पैदा होती हैं, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, विस्तार को सार मिलाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सामना समाना सहयोग, आठ शक्तियां जो आपने सुनी होंगी, नहीं तो सुनेंगे, तो ये आठ शक्तियां पैदा होती हैं। ये सात एनर्जी के आधार पे आत्मा, जब आत्मा सातों गुणों से भरपूर है, सतो प्रधान कहते हैं, सेवन सतोमन सात, प्रधान माना भरपूर, सात से भरपूर। सत्युग त्रेता में हम ऐसे सत्युग में हम सतो प्रधान थे, फिर जब ये आत्मा सात गुण आधे 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 रह जाते हैं, आधे से कम हो जाते हैं, तो उसे रजो कहते हैं, रजो, रजो माना शाम, अंधेरा होने लगता है, 50% से कम एनर्जी हो गई, रजो प्रधान। और तमो माना डार्कनेस, अंधेरा। जब आत्मा में सातों गुण लगे ना के बराबर, जैसे आज का इंसान है, तो वो तमो प्रधान कहलाता है, ठीक है। इसके आधार पर हमारा शरीर कार्य करता है, सतो प्रधान है, आत्मा सातों गुण से भरपूर है, तो हमारी पूरी बॉडी परफेक्ट, सारे आठों अंग ठीक काम करते हैं। रजो में थोड़ा थोड़ा बीमारी आने शुरू होती है, पहले मन में ज्यादा आने लगती हैं, फिर धीरे धीरे तमो, तमो माना, अब देखो हर मनुष्य, जैसे मैंने बताया 100 लोगों को 200 बीमारियां हैं, मन भी बीमार, तन भी बीमार, सामाजिक भी बीमारी और आध्यात्मिक बीमारी, बीमारियों से भरपूर, सब रोगी, सब बीमार, डॉक्टर भी बीमार, नहीं तो आज का इंसान ऐसा। तो अभी जो है हमारी जो एबीस, ये जो इसके बेस पर हमारा एशिया लगता है, हायर ब्रेन हमारा एशिया लगा पाता है, एशिया माना ए फॉर एनालिसिस, एनालिसिस माना आईक्यू, अर्थात इंसान के पास वो पावर है कि वो कोई बात का विश्लेषण कर सकता है, जो देखता है, सुनता है, बोलता है, खाता है, कोई से छूता है, किसी बात को फील करता है, उसका विश्लेषण कर सकता है। जानवर विश्लेषण नहीं कर सकता है, पशु विश्लेषण नहीं कर सकते, जमा घटा कर सकता है इंसान, गुना कर सकता है। आप तोता बोलता है, तोते को जो बोले आप, तोते को बोले दो जमा दो चार, तो क्या बोलेगा तोता? दो जमा दो चार। उसको बोले दो जमा दो दस, तो क्या बोलेगा तोता? दो जमा दो दस। और अपने बच्चे को बोलो तो केजी में पढ़ता है, उसको बोलो क्या करेगा बच्चा? पापा आपको इतना भी नहीं आता है? नहीं, क्योंकि बच्चे इंसान जो है इस बात को एनालाइज, जानवर से रिपीट कर सकता है, जो सिखा दो वो रिपीट कर लेगा, वैसा करके दिखा देगा, किंतु मनुष्य उसको एनालाइज कर सकता है, जानवर एनालाइज नहीं कर सकता है। फिर एस फॉर सिंथेसिस, इससे बनता आईक्यू, हमारी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, जो मैं इंटेलिजेंस इंटेलेक्चुअल की बात कर रहा हूं, इंटेलेक्चुअल लोगों के अंदर ज्यादा टेंशन होती है। फिर है सिंथेसिस, सिंथेसिस माना जो आपने विश्लेषण किया, फिर अपने आप समाज में अपने घर से लगा के देखो, अपने समाज से लगा के देखो, क्या वो क्या उससे लोग उससे दुखी तो नहीं हो जाएंगे लोग, क्या वो खुश होंगे इस बात से? उसे कहते हैं ईक्यू, इमोशनल इंटेलिजेंस। और फिर है आई, आई माने इंटेग्रेशन, फिर उसको सारी मनुष्य जाति से लगा के देखो, इसको बोलते हैं एसक्यू, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। मान लीजिए मैंने बम तो बना दिया, मुझे फायदा तो बहुत हो गया, पर विश्व का क्या होगा? एटम बम तो बन गया, नहीं बना ना, विश्व को क्या हुआ? नाम तो बहुत हो गया, पैसा तो बहुत मिल गया, मैंने दवाई में मिलावट तो कर दी, किंतु लोगों को क्या हुआ? फायदा तो मुझे तो फायदा हुआ, समाज को क्या हुआ? नुकसान। तो ये जो है फिर हमारी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। और फिर ए फॉर एसिमिलेशन, इन सबका अल्टीमेट रिजल्ट क्या हुआ? उसे कहते हैं एच क्यू, हैप्पीनेस कोशेंट। क्या मैं खुश हूं सब कुछ करने के बाद? सब कुछ किया मैंने, क्या मैं खुश हूं? तो ये है हमारा एच क्यू, हैप्पीनेस कोशेंट। ठीक है, तो इस तरह से चार जो क्यूज हैं वो हमारे हायर ब्रेन में पॉसिबल है। ये जो विकार जिसे कहते हैं आप, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कहते हैं, ये बेसिकली ये हायर ब्रेन का फंक्शन है। हायर ब्रेन क्या करता है? हायर ब्रेन में हम क्या करते हैं? हायर ब्रेन में हम क्या करते हैं? एशिया लगा के एक्शन एक्शन करते हैं। ठीक है, और लोअर ब्रेन में क्या करते हैं? जो कुछ हम देखते सुनते बोलते खाते पीते हैं उसमें हम क्या करते हैं? सीधी रिएक्शन करते हैं। क्या करते हैं? जैसे कुत्ते को छुए तो कुत्ता क्या करेगा? भौंकेगा, कोई भी छुए, है ना? गधे के पीछे खड़े हो जाए तो क्या करेगा? गधा क्या करेगा? लत्ती मार देगा ना? कोई भी खड़ा हो जाए, है ना? तो वो रिएक्शन करते हैं। किंतु ऐसा ही आज का इंसान करता है। आज इंसान एशिया यूज नहीं कर रहा है, एशिया लगाता नहीं है, है एशिया उसके पास किंतु लगाता नहीं है। आज इंसान क्या कर रहा है? शक्ल देखी, काम विकार देखा, सिर्फ विश्लेषण नहीं किया, काम विकार जागृत हो गया शक्ल पर, है ना? कोई काम मेरे हिसाब से नहीं हुआ, क्रोध, कोई चीज मेरे को अवेलेबल है, सस्ती ये फ्री अवेलेबल है, चाहे मेरे काम की नहीं हो, मुझे आवश्यकता नहीं है, लोभ, रिएक्शन, है ना? कोई मेरी प्रेज करता है, मेरे बगैर मुझे बार बार फोन करता है, मोह, मेरे बच्चे से, मेरे संबंधियों से मोह, है ना? और चीजों का लोभ होता है, व्यक्तियों से मोह होता है, और फिर अहंकार, जो मैंने प्राप्त कर लिया, अहंकार। तो ये पांच विकार क्या है? रिएक्शंस हैं। अगर आप एशिया लगा दें तो क्या होगा? काम विकार रहेगा, काम विकार रहेगा। एनालाइज करो, ईक्यू लगाओ, एसक्यू लगाओ, एचक्यू लगाओ, रहेगा? क्रोध आएगा, लोभ आएगा, मोह आएगा। तो ये जो रिएक्शंस हैं, स्ट्रेस इज ए रिएक्शन टू चेंज। ठीक है, परिवर्तन जीवन का नियम है, लॉ ऑफ लाइफ इज चेंज। जीवन बदलता रहता है, हर क्षण बदल रहा है। आपने शक्ल देखी, आपने शक्ल देखी, बूढ़ी थोड़ी जुर्री पड़ गई, टेंशन हो गई, है ना भाई? शक्ल तो बदलेगी ना? नहीं बदलेगी। बाल शीशे में देखे सफेद हो गए, टेंशन हो गई, है ना? नहीं होती टेंशन, स्ट्रेस नहीं होती क्या? जीवन का नियम है, एशिया लगाओ ना। अब बाल सफेद हो गए, एशिया लगाओ, टेंशन होगी क्या? होगी टेंशन? होगी नहीं होगी? कुछ भी चेंज होता है जीवन में, एशिया लगा दो। पर एशिया कब लगेगा? एशिया कब लगेगा? एशिया कब लगेगा बताइए? विवेक कहां से आएगा? चिंतन, चिंतन कहां से? क्या क्या चिंतन करेंगे? देखिए एबी जो है ना, ए एनालिसिस कहां से आता है? इस ए से आता है। जितना अपने को आत्मा समझते हैं, आत्मा समझ के दूसरों से, अपने दूसरों से व्यवहार करते हैं, मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा, और तब आपके अंदर विश्लेषण की शक्ति पैदा होती है। जितना ईगो में आके बिहेव करते हैं, अहंकार के अंदर आके बिहेव करते हैं, मोह के वश आके व्यवहार करते हैं, क्रोध के वश होके व्यवहार करते हैं, तो आपकी विश्लेषण शक्ति कमजोर हो जाती है। ठीक बात है गलत बात है? पांच विकार जो हैं ये क्या है, बेसिकली रिएक्शंस हैं। जब इनके वश होकर आप विश्लेषण करेंगे तो आपके विश्लेषण ठीक नहीं होगा। तो आत्मिक, जितना अपने को आत्मा समझ के आप बिहेव करेंगे आपकी विश्लेषण शक्ति बढ़ेगी। जितना परमात्मा को, परमात्मा मैं परमात्मा की संतान हूं बाबा को याद करके, उतनी आपकी ईक्यू बढ़ेगी, सिंथेसिस शक्ति बढ़ेगी। जितना आप परमात्मा को याद करेंगे संबंधों से, हर संबंध से, उतना आपकी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस बढ़ेगी। और जितना आप ड्रामा, संसार रूपी ड्रामा को समझेंगे, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, और जो होने वाला बहुत अच्छा, उतना क्या होगा, खुशी बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी? तो जितना अधिक एबीसीडी आपके अंदर होगा उसके आधार पे आपकी ये चारों एशिया बढ़ेगा। और एशिया बढ़ेगा तो आप क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, तनाव मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, ये शक्ति सातों, ये सातों एनर्जी कहां से आती है? परमात्मा कौन है? सुप्रीम सोल, परमात्मा सात गुणों का सागर है। तो जितना अपने को आत्मा समझ के हम परमात्मा को याद करते रहते हैं, सातों एनर्जी हमारे अंदर आती रहती है और हम क्या हो जाते हैं, स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। तो मैं आपको यही बता रहा हूं यहां पर, स्ट्रेस इज ए रिएक्शन टू चेंज। अगर आप तनाव मुक्त रहना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एशिया लगाना पड़ेगा। एशिया कब लगेगा, जब ज्ञान आपके अंदर एक्यूरेट होगा। ठीक है, और ज्ञान के आधार पर फिर योग होगा, और योग के आधार पे फिर वो धारणा पैदा अंदर आपके अंदर, आपके अंदर वो अच्छे वैल्यूज गुण आपके अंदर आएंगे, दैवी गुण आपके अंदर आएंगे, और उसके द्वारा जब सेवा होगी। तो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चार सब्जेक्ट है ना हमारे। तो जब आप उसको जीवन में उसके मूर्त बन जाएंगे तो आपको कभी भी तनाव नहीं हो सकता। तो ये आपके अंदर चेंज क्या क्या होते हैं, अंदर के चेंज मन में होते हैं और शरीर में होते हैं। मैंने बताया बुढ़ापा आ गया, बीमारी आ गई, मन में टेंशन हो गई, ये सब बता चुका हूं। एक्सटर्नल, परिवार में चेंज हो गया, परिवार में कोई बीमार हो गया, कोई मर गया, समाज में कुछ चेंज हो गया, वर्क प्लेस जहां काम करते हैं वहां कुछ चेंज हो गया, शहर में कुछ चेंज हो गया, ट्रैफिक बढ़ गया, पोल्यूशन बढ़ गया, आतंकवाद, नेशनल कुछ पॉलिसी बदल गई, इनकम टैक्स बहुत बढ़ गया, चीजें महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पॉलिटिकल प्रॉब्लम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, लीगल प्रॉब्लम्स, है ना। ये बाहर के चेंजेस हैं, ये अंदर के चेंजेस हैं। और ये जो है टेंशन क्यों होती है, जब प्रेशर बढ़ जाते हैं, अंदर के प्रेशर बढ़ जाए जो बताया मैंने, और एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ जाए, ये आत्मिक शक्ति बढ़ जाती, घट जाती है। तो ये फार्मूला है बस, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर्स डिवाइडेड बाय इनर स्ट्रेंथ। प्रेशर्स बाहर, प्रेशर दो तरह के होते हैं, अंदर के प्रेशर, बाहर के प्रेशर, जो हम बदल नहीं सकते, तुरंत नहीं बदल सकते हैं, किंतु ये हम बदल सकते हैं। आत्मिक इनर स्ट्रेंथ ना, आत्मिक शक्ति। एक सन्यासी माउंट हिमालय पर, हिमालय पर बैठा हुआ, एक एक सिंपल कपड़े पहने हुए, एक लंगोटी और एक सिंपल कपड़ा पहने हुए मुस्कुरा रहा है, ठंडी है बाहर, है ना, मुस्कुरा रहा है, खोया हुआ है। और एक आदमी एयर कंडीशन रूम में बैठा हुआ है और उसके पास एसी रूम है, मोबाइल है, रिमोट कंट्रोल हर चीज का है, वो टेंशन में पसीने पसीने हो रहा है। क्या डिफरेंस है दोनों में? क्या वो जंगल में बैठे सन्यासी को टेंशन, वो प्रेशर नहीं है क्या? सो खाना भी चाहिए, सांस भी चाहिए, पीना भी चाहिए, सोने को भी चाहिए, है ना। वो सब प्रेशर सहते हुए मुस्कुरा क्यों रहा है, पागल है क्या? नहीं, उसके अंदर आत्मिक शक्ति ज्यादा है, इसलिए वो एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर दोनों के दोनों उसके लिए भारी बात नहीं है। तो आत्मिक शक्ति जब ज्यादा होती है तो उस आदमी को, चाहे वो यहां देखें आप, ब्रह्मा कुमारीज में देखें, यहां पर देखिए आप, हमारे जो भाई बहन हैं जो आप सेवा कर रहे हैं आपकी, सब मुस्कुराते क्यों मुस्कुराते हैं? क्या यहां प्रेशर नहीं होते क्या? यहां भी बहुत सारे प्रेशर्स हैं, है ना। हर चीज यहां मार्केट से लानी होती है, टाइम पर अरेंज करनी होती है, हमारे घर में कोई 10 जने आ जाएं तो हम टेंशन में आ जाते हैं, और यहां पर कितने लोग आते हैं एक साथ, है ना, उनकी सब तरह की सुविधा, सब तरह का देखभाल, लाना ले जाना, छोड़ना, हर काम करना, प्रॉपर उनको रखना, वो सब प्रेशर सहते हुए क्यों? क्योंकि आत्मिक शक्ति अधिक है, इसलिए वो मुस्कुरा सकते हैं, हर समय मुस्कुराते रहते हैं, इसलिए वो तनाव मुक्त हैं। इसलिए ये जगह क्या, इस जगह का नाम पता क्या है? आपने बेगमपुर कभी देखा है क्या? हाँ, ये है बेगम, बेगम है ना, जहां कोई गम ना हो, ये है बेगमपुर, है ना। और आप कौन है? बेगमपुर के बादशाह। कौन है? तो बेगमपुर की। इस तरह से अगर आप, तो आप आत्मिक शक्ति बढ़ाएं, जिसको आप राजयोग मेडिटेशन से बढ़ा सकते हैं, और इसका साधन है ABCD। तो इस तरह से मैं समझता हूं, यहां बस ये समझ लीजिए, तनाव स्ट्रेस को अगर आप, तनाव से बीमारियां पैदा होती, चाहे हार्ट की बीमारी हो, चाहे कोई बीमारी भी हो, और पॉजिटिव टीम, अगर आपकी टीम मन पॉजिटिव हो गया तो उससे बीमारियां खत्म हो जाती हैं। और ये मैं इसको छोड़ देता हूं। तो ये सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हेल्दी शब्द बनाई, दो शब्दों से हील प्लस दाई, अर्थात हील दाई। आप अपनी हेल्थ के लिए स्वयं जिम्मेवार हैं। सारे विश्व में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो आपको हील कर सकता है, वो कौन है? स्वयं आप हैं। और हेल्दी माना स्वस्थ, स्व माना आत्मा, स्था माना स्थित। तो आत्मिक स्थिति में स्थित, जो व्यक्ति आत्मिक स्थिति में स्थित है वो स्वस्थ है। अगर आप सदा स्वस्थ रहना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? सदा आत्मिक स्थिति में स्थित रहिए। क्योंकि जब अपने को आत्मा समझते हैं तो डर आपके अंदर से निकल जाता है। ना मरने का डर, ना बुढ़ापे का डर, ना बीमारी का डर, ना गरीबी का डर। बीमारी माना बी माना डर, मारी माना बने रहना। तो तीनों डर से मुक्त हो गए। बचपन में आपने कविता सुनी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। कवि ने कविता इसी बात को सोच के लिखी थी। एक सितारा यहां चमक रहा है, वो कैसे सब कुछ चला रहा है मुझे आश्चर्य हो रहा है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तुम हो तो सब चल रहा है, तुम नहीं हो तो कुछ भी नहीं चलता है। फिर उसने क्या कहता है उसके बाद? अप अबाउ द वर्ल्ड सो हाई लाइक ए डायमंड। एक और सितारा है सूर्य चांद तारों के पार, जो हीरे जैसा है। फिर गलती कर दी उसने लिखने में, इन द स्काई बोल दिया, होना चाहिए था अबाउ द स्काई, वो परमात्मा के लिए कहा। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर अपने को हेल्दी माना ही सोल कॉन्शियस है, और अगर अपने आप को ठीक करना है तो आपको सत्य ज्ञान चाहिए। सत्य ज्ञान वो कौन दे सकता है? सिर्फ परमात्मा दे सकता है, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सदा सत्य है, शिव ही सदा सुंदर है। और वो हमें इंफॉर्मेशन एजुकेशन काउंसलिंग के द्वारा ज्ञान देता है, अब पहले अपने बारे में, आत्मा के बारे में, मन के बारे में, बॉडी के बारे में। और ये जो है इसका तरीका है, साइंस के हिसाब से जो मैंने बताया, हाइपोथैलेमस जो है पिट्यूटरी ग्लैंड है, सुबह अर्ली मॉर्निंग 2 से 5 बजे के बीच में, इसको अमृत वेला कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। इस समय अगर हम मेडिटेशन करते हैं, अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते हैं, तो 18 हार्मोन्स हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी और पीनल ग्लैंड से निकल आते हैं, बैलेंस में निकल आते हैं। इसलिए इसकी पीक 4 से 5 के बीच में होती है। अगर 4 से 5 के बीच में आधा घंटा आप आनंद की स्थिति में पहुंच जाएं, तो 18 हार्मोन बैलेंस में निकल आएंगे और अगले 24 घंटे के लिए आपका मन और तन स्वस्थ हो जाएगा। पूरी बॉडी की सेल्स में और मन के विचारों में एकदम तारतम्य स्थापन हो जाएगा, सामंजस्य स्थापन हो जाएगा। जो भी बीमारी है मन तन की, सब आपकी 24 घंटे में कम हो जाएंगी। अगर आप 4 से 5 के बीच सोए रहते हैं तो आपकी इंबैलेंस हो जाएगा और उससे हर बीमारी बढ़ जाएगी। इसलिए कहा जाता है इस समय जो सोता है उसका भाग्य भी सो जाता है। यह महत्व है अमृत वेले का, 4 से 5 के बीच में योग का। इसलिए जितने भी अच्छे पुरुष हैं, महापुरुष रहे हुए हैं, वो सब के सब इस समय उठ करके परमात्मा को ध्यान करते हैं। और हमारे यहां भी ब्रह्मा कुमारी इसमें यह नियम है कि हम सभी 3:30 बजे उठते हैं और सुबह सुबह उठ करके मेडिटेशन करते हैं। और सबसे जरूरी है आनंद की स्थिति, आनंदमय स्थिति। वो तभी पॉसिबल है क्योंकि परमात्मा ही सच्चित आनंद स्वरूप है सदा। तो अपने को आत्मा समझ के परमा, इसी को राजयोग कहते हैं। तो इस ये पहले करें। दूसरी बात, ये एनर्जी, यहां 7 एनर्जी आ गई आपके अंदर, परमात्मा 7 गुणों का सागर है। फिर एनर्जी बॉडी में कैसे आएगी? 8 बजे आपके एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन निकलते हैं, कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन निकलता है। वो जो 5 बजे से लेकर 8 बजे तक जो कुछ आप विचार मन में लाएंगे, जो स्मृतियां मन में लाएंगे, भावनाएं मन में लाएंगे, उसके आधार पर वो हार्मोन निकलेगा। इसलिए 8 बजे तक आप चुप रहें, दुनिया की चीजों से, अखबार, टेलीविजन, मोबाइल से दूर रहें। इस समय 5 से 8 परमात्मा का ध्यान करें। अच्छी अच्छी टीम, अच्छी टीम माना अच्छे विचार, अच्छी भावनाएं, अच्छी स्मृतियों को मन में धारण करें। हम इसके लिए सुबह 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक मुरली का, प्रमातम मुरली कहते हैं, प्रमातम महावाक्य से मुरली कहते हैं, उसका अध्ययन करते रहते हैं, उसी चिंतन में रहते हैं। 7 से 8 मुरली सुनते हैं और 5 से 7 जब तैयार हो रहे होते हैं, वॉकिंग कर रहे होते हैं, उस समय उसी ध्यान में हम वो कार्य करते हैं, उन्हीं उन्हीं मुरली के, परमात्मा के महावाक्यों को सिमरण करते हुए, चिंतन करते हुए, मंथन करते हुए कार्य करते हैं। उससे हमारे एड्रिनल हार्मोन ठीक बैलेंस में निकल आते हैं। तो 7 एनर्जी बॉडी की, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखानंद और शक्ति हमारी बॉडी के रोम रोम में चली जाती है। फिर हम क्या करते हैं, फिर इस शरीर से ये एनर्जी बाहर निकले और मेरा कवच बन जाए, मेरे आसपास शील्ड बन जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, ताकि हमारे आसपास का वातावरण का असर मुझ पर ना हो, बल्कि मैं आसपास के वातावरण को प्रभावित कर सकूं, अपने अपने रहने लायक बना सकूं, अच्छा सुख शांति संपूर्ण बना सकूं, उसके लिए शुद्ध सात्विक आहार, शुद्ध माना परमात्मा की याद में बनाया हुआ, परमात्मा की याद में खाना, सात्विक माना वो आहार जो 7 गुणों को बढ़ाए, फल, सब्जियां, अंकुरित दलिया, रोटी, सब्जी, दूध। राजसिक माना जो पराठा, पकोड़ा, समोसा, मिठाइयां, तले हुए पदार्थ जो आलस पैदा करते हैं। तामसिक पदार्थ माना जो आपके अंदर उत्तेजना पैदा करते हैं, नॉन वेजिटेरियन, लहसुन, प्याज, बासी भोजन, तो ऐसे भोजन जो आपके अंदर उत्तेजना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को जागृत करते हैं, तो वो पदार्थों का वर्जित है हमारे, वो हमें नहीं खाने चाहिए, ठीक है। तो शुद्ध सात्विक भोजन, शुद्ध सात्विक सैर, परमात्मा की याद में 7 गुणों का ध्यान करते हुए परमात्मा सागर, उसी याद में मेडिटेटिव सैर, 45 मिनट सुबह पेट साफ करने के बाद, नहाने के बाद, सूर्य उदय के साथ वॉकिंग करें, और फिर शुद्ध सात्विक नींद, सोने के पहले अपने ऑडिट कर दें अपने मन को, आज सुबह से क्या गलती हुई, क्या गलती नहीं हुई, क्या हमने अच्छा किया, क्या बुरा किया, भगवान को बता दें चिट्ठी लिख के, और फिर कागज फाड़ के डस्टबिन डाल दें और परमात्मा को याद करके सो जाएं। 10 बजे सो जाएं, 4 बजे उठ जाएं। और फिर अगर आपके कोई बीमारी है शरीर में, जो पिछले जन्मों के पाप कर्मों का फल है, डॉक्टर से कुछ अकाउंट है आपका बाकी, तो डॉक्टर की 2-4 गोली खा लें, ठीक है। तो अगर आप ये तीनों का बैलेंस करते हैं, तो एनर्जी ये आत्मा से, जो ये हमारे ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखानंद हमारी बॉडी से निकलती रहती है और हमारे आसपास एक ऑरा बन जाता है, आभामंडल बन जाता है, और ये आभामंडल हमारे लिए सुरक्षा कवच का कार्य करता है। और जितना फिर अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते जाते हैं, जितना इस रास्ते पर चलते जाते हैं मजबूती के साथ, पवित्रता, शुद्ध अन्न, सत्संग, दैवी गुणों की धारणा करते जाते हैं, उतना आपका ऑरा बड़ा होता जाता है, और वो आपका फिर सुरक्षा कवच खाली आपकी हेल्थ ठीक नहीं रखता है, बाकी आसपास के लोगों का भी सुख शांति बढ़ाता रहता है। तो ये तरीका है अपनी एनर्जी को बढ़ाने का, और यही राजयोग की डेफिनेशन है कि राजयोग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ हार्मोनाइजिंग स्पिरिचुअल, मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी थ्रू कनेक्शन विद द अल्टीमेट सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी दैट इज गॉड फॉर एंजॉइंग एवर हेल्दी, एवर वेल्दी एंड एवर हैप्पी लाइफ। यही सत्युग की जीवन हमारे अंदर आएगी जब हम संपूर्ण होंगे, संपन्न और संपूर्ण होंगे, ये हमारी स्थिति होगी। और ये इससे हमने जो रिसर्च की थी ग्लोबल हॉस्पिटल और DRDO ने मिलकर, कैसे हमारी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं और राजयोग मेडिटेशन से कैसे खुल जाती हैं, मैं आपको सिर्फ एक एंजियोग्राफी दिखा देता हूं लास्ट में, 2-1 मिनट में लगेगा देखने में, ताकि आपको पता लग जाए कि कैसे तनाव सबसे बड़ा कारण है हार्ट की बीमारी का, और कैसे उसको हम ठीक कर सकते हैं राजयोग मेडिटेशन से, जो एंजियोप्लास्टी बाईपास करने से भी ब्लॉकेज ठीक नहीं हो पाते हैं, दोबारा दोबारा करानी पड़ती है, वो सदा के लिए हमारे ब्लॉकेज कैसे खुल जाते हैं। 93% पेशेंट्स के ब्लॉकेज खुल गए थे इस ग्रुप, इस रिसर्च में। ये देखिए 80% ब्लॉक है, खुल गया है पूरा, ये देखिए पूरा यहां से लेकर यहां तक ब्लॉक है, पूरा खुल गया है, सिर्फ राजयोग मेडिटेशन, शुद्ध सात्विक आहार और शुद्ध सात्विक सैर, समय पर सोना, समय पर उठना, 4 बजे उठ के मेडिटेशन करना, फिर मुरली सुनना, सुबह सैर करना, ठीक जो भोजन बताया गया वो भोजन करना, समय पर सोना, 10 बजे सोना, 4 बजे थोड़ी सी दवाई खाना, दवाई भी बाद में छूट जाती है। देखिए ब्लॉक 100% ब्लॉक खुल गया है, ये 100% ब्लॉक खुल गया है, ये मल्टीपल ब्लॉक्स हैं सारे खुल गए, ये 80% और 90% दोनों ब्लॉक खुल गए हैं। इस पेशेंट को 2 हार्ट अटैक आए थे, हार्ट एनलार्ज हो गया था, बड़ा हो गया था, इसकी पंपिंग पावर 30% रह गई थी, और जब इसने इस प्रोग्राम को फॉलो किया पंपिंग पावर बढ़ गई, हार्ट नया बन गया, रीजनरेट हो गया, स्टेम सेल थेरेपी जैसे करते हैं उससे भी अच्छा रिजल्ट इसका रहा, 80% ब्लॉक खुल गया, ये इसकी पंपिंग पावर से 20% रह गई थी, जब इस पेशेंट ने इस प्रोग्राम को फॉलो किया देखिए इसका पंपिंग पावर 50% हो गई, नॉर्मल 60% होती है, ये देखिए ये 100% ब्लॉक खुल गया। कंट्रोल ग्रुप, जिन्होंने सिर्फ मेडिटेशन, जिन्होंने सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज को फॉलो किया, मेडिटेशन नहीं किया, मन को नहीं बदला आपने। देखिए हर ब्लॉक के पीछे हमारे मानसिक कारण होते हैं, हर ब्लॉक को कारण हमारा मानसिक कारण है। आपकी जो कौन सी लेफ्ट में राइट में कौन सी आर्टरी में ब्लॉक है, उसकी सोच, आपकी सोच है उसके पीछे। जब सोच नहीं बदलेंगे तो ब्लॉक निकलेगा नहीं और ही बढ़ेगा। तो इस तरह से जब आप करेंगे, ये देखिए ब्लॉक बढ़ गया, और ये देखिए एक और दिखाते हैं, 100% ब्लॉक है, ये खुल गया है, ये देखिए पूरा खुल गया। तो ये तरीका है, अगर आप स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं तो थ्री डायमेंशनल हेल्थ केयर कहते हैं इस प्रोग्राम को हम, स्पिरिचुअल केयर। बी नेचुरल, जो भी काम करें घर में बाहर, काम करना मना नहीं है, जो भी काम करें घर में ऑफिस में घर में जहां भी काम करते हैं, तो आप सोल कॉन्शियस होकर करें। इसके लिए चार से पांच के बीच में आधा घंटा मेडिटेशन कर लें, आनंद की स्थिति का अनुभव कर लें, और मेंटल केयर, 8 बजे तक चुप रहें, 7 से 8 मुरली सुने, इससे आपका कॉर्टिसोल हार्मोन ठीक निकलेगा। और लास्ट में फिजिकल केयर, शुद्ध सात्विक आहार, ईट नेचुरल, सुबह मॉर्निंग वॉक कर लें सनराइज के साथ, शाम को सनसेट के साथ इवनिंग स्ट्रोल कर लें आधा घंटा, 10 बजे सो जाएं, 4 बजे उठ जाएं, और कभी आपको आवश्यकता है दवाई की तो दवाई भी लेने में हिचके नहीं, फिर दवाई भी धीरे-धीरे छूट जाएंगी और आपका हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। ओम शांति।